हम लोग सब चिड़ियों की जगह है। ये माया शक्ति चारों तरफ से ढकी हुई है ही ये अज्ञान रूप, अंधकार रूप। इसलिए हम लोगों को माया कभी दिखती नहीं है। जैसे वहां बंद कुठार है, हम लोगों को तो उस माया का एक अत्यंत थोड़ा सा हिस्सा जो हमको अपने मन इंद्रियों के द्वारा दिखता है, बस उतना ही उसका रूप दिखता है। 100 साल जिंदा रहोगे, 100 काल के अंदर 100 चीजें हुई, उसमें 100 साल की चीजों को तुमने जाना तो तुम्हारा ज्ञान एक दाने जितना है कि नहीं है? ठीक समझ गए भाई? अरबों खरबों साल से ये सृष्टि चल रही है, तुमको तो ये 100 साल का ही ज्ञान होना है। इस 100 साल में भी सब चीजों को जान लोगे क्या? कहां कहां निहारिकाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, अलग अलग तारे, अलग अलग लोक हैं, उन सबको जान लेते हो क्या? तो 100 साल में भी होने वाली अनंतताओं में से तुम थोड़ी सी चीज खाली पृथ्वी को जानते हो। आगे यदि विचार करो तो क्या इस पृथ्वी में भी जहां कुछ हो रहा है सब चीज जानते हो? जो दिल्ली में हो रहा है वो थोड़ा जान लेते हो, और सुनी सुनाई 2-4 अखबार बांच लेते हो। दिल्ली में भी होने वाली सब चीजों को जानते हो क्या? 80 लाख की आबादी है, घर में होने वाली चीजों को जान लेते हो, कुछ इधर उधर की सुनी हुई चीजों को जान लेते। आगे घर में भी होने वाली सब चीजों को जानते हो क्या? एक आदमी था, एक महात्मा के पास जाया करता था। महात्मा कई बार जो उसके मन में प्रश्न होवे उसका उत्तर दे देते थे। महात्मा से जरा ज्यादा नजदीकी हो गया। एक दिन कहने लगा, भगवान आपको कैसे पता लग जाता है कि मेरे मन में क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा, भाई जो मन है वो तुमको तो लगता है जैसे लोहे के संदूक में बंद हो गए, दूसरे को देख के कुछ पता नहीं चलता। जो विचारशील होते हैं उनको ऐसा लगता है मानो कांच में बंद हो गए। तो कांच में बंद चीज होती है तो साफ दिख जाती है। कहने लगा, भगवान मुझे भी ये विद्या सिखा दीजिए दूसरे के मन की बात। महात्मा ने कहा, अरे गृहस्थों के काम की चीज नहीं है, ये नहीं सिखाऊंगा तुमको। दस बीस दिन पीछे पढ़ा ही रहा। महात्मा कहते रहे, जाने दे, नहीं माना। एक दिन परेशान हो गए, महात्मा ने कहा, अच्छा बतला देता हूं। तो उसको बता दिया। दूसरे के मन का ज्ञान कैसे हो जाता है। बड़ा खुश हो गया, घर पहुंचा, तो ये सब विद्या लेने में थोड़ा समय लग गया था, तो पहुंचते ही उसको अपनी पत्नी दिखाई दी। पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, आइए आइए, भोजन तैयार है। अब उसको तो मन दिख रहा है ना, कब से पकोड़े बना करके रखे हुए थे, कोई इनका आने का समय नहीं। जब कभी दो घंटे बाद आ गए, कभी घंटे बाद आ गए, अब वो पकोड़ों का क्या स्वाद बचा होगा, ये तो वो मन में सोच रही है। चलो फिर से दोबारा जरा तल करके दे दूंगी। ये कहेंगे कि जरा ओवर हो गए, क्योंकि तो दूसरी बार तलने पड़ेंगे ना। अब वो देख रहा है कि देखो ऊपर से तो कह रहा आइए आइए, तो आपके लिए बढ़िया चीज बनाई है। तब तक लड़का आ गया, लड़के ने बड़े प्रेम से पिताजी के पैर छुए, नमस्कार किया। अब वो उसका मन उनको दिख रहा है, तो लड़का सोच रहा है, तीन दिन से इनसे कह रहा हूं एक आदमी को 20 लाख का पेमेंट करना है, मेरी नाक कट रही है और ये खाली पूछे जा रहे हैं तुमने इतना ज्यादा कैसे कर दिया, क्या कर दिया। बुड्ढे हो गए लेकिन इनसे पैसा इनके हाथ से छूटता नहीं है। अब उसको दिख रहा है, इस प्रकार से कहानी लंबी है। थोड़ी देर में ही उसको पता लग गया कि मनुष्य बाहर जो करता है और अंदर जो सोचता है उसमें बड़ा फर्क है। दुखी हो गया, अंत में महात्मा के पास गया, कहने लगा, भगवान ये विद्या आप हमारी वापस ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा, तेरे से पहले ही कहा था ये गृहस्थियों के काम की चीज नहीं है, ये तो जिनके मन से राग द्वेष छूट गया है, जिनके मन में कोई किसी चीज का आग्रह नहीं है, उनके तो ठीक मतलब की है, अन्यथा तो ये दुख का कारण हो जाता है। तो अपने घर में भी होने वाली सब चीजों का पता नहीं है, अपने मन में होता है वही पता है, बाकी घर में किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता है। तो विचार करो, अनंत काल में 100 साल, 100 साल में ही केवल एक लोक, एक लोक में ही केवल एक परिवार, एक परिवार में भी सचमुच में केवल अपना मन, इतना ही जानते हो तो हजारों मन के कुठार में एक गेहूं के दाने जितना ही है। अब इस माया की अनंतता का विचार करो। लोग इतना इतना जान करके सोचते हैं ये माया का अंत आएगा, इसका कभी अंत नहीं आना है, ये तो रोज नई नई चीजों को उत्पन्न करती रहेगी। कई बार लोग कहते हैं, महाराज ये विज्ञान बढ़ते बढ़ते कभी खत्म होगा क्या? ये कभी खत्म नहीं होना है, ये तो सर्व ईश्वरीय शक्ति है, ये तो हमेशा इसी प्रकार बढ़ता ही रहेगा। कुछ चीजें छिप जाएंगी, कुछ चीजें प्रकट हो जाएंगी। आजकल मंत्र शक्ति छिप रही है, यंत्र शक्ति प्रकट हो रही है। वही काम पहले मंत्रों से होते थे, वो मंत्र अब लोगों को पता नहीं, यंत्रों से हो जाते हैं। कई शक्तियां छिप जाती हैं, कई शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। अब ये तो है बदलने वाला कारण, एक नाम रूप के बाद दूसरा नाम रूप, तीसरा नाम रूप, ये बदलने वाला कारण। वो नाम रूप नहीं रहा, दूसरा नाम रूप आ गया। और नहीं बदलने वाला कारण सत है। अब ये नहीं बदलने वाला कारण कहा जाता है, परंतु सचमुच में बदलता नहीं तो कारण कैसा? कारण का मतलब है जो कार्य रूप में बदले, तो ये कार्य रूप में बदलता तो है नहीं, इसलिए इसको कारण कह नहीं सकते। फिर यहां वेद इसको कारण क्यों कहता है? तो ऐसे समझो, इशारे में समझना, पुत्र की उत्पत्ति में बदलने का काम तो सब मां करती है, पेट उसका ही बढ़ेगा, बच्चे उसके ही होगा, दूध भी उसके ही आएगा। पुत्रोत्पत्ति के प्रति बदलने वाला कारण तो केवल मां है, पिता में तो कोई फर्क नहीं आता ना, वो तो जैसा है वैसा ही है, न उसका कभी पेट फूलता है, न कोई उसको पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है, न कोई उसको दूध पिलाना पड़ता है। सारे परिवर्तन तो मां में है, तो फिर पुत्र का कारण मां को ही मान लो, बाप में तो कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन न आने पर भी बाप के बिना मां बेटा पैदा कर नहीं सकती, इसलिए बाप कारण है। ठीक इसी प्रकार से सत ब्रह्म के बिना माया कुछ भी पैदा कर नहीं सकती, इसलिए ब्रह्म कारण है। इसीलिए गीता में भगवान ने भी कहा, अहम बीज प्रदपिता, मैं केवल पिता की तरह बीज देने वाला मात्र हूं, बाकी तो सब माया करती है। बदलने वाली माया, उससे अनंत चीजें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो अनंत शक्ति है। सत ब्रह्म नहीं बदलने वाला, एक जैसा। बदलने वाले कारण को देख करके संसार का कार्य चलता है, नहीं बदलने वाले कारण को देखने पर मोक्ष का कार्य होता है, क्योंकि मोक्ष में बदलना कुछ नहीं है। इसलिए कहा, सर्वैश्वर्य संपन्नः सर्वेश्वरः शंभुराकाश मध्ये ध्येयः। उस ओंकार के द्वारा जो ये नहीं बदलने वाला शंभु, शंभु का मतलब होता है शम कल्याणम भवति इति शंभुः, वो कल्याण स्वरूप है, उसको कल्याण करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो कल्याण स्वरूप है। उसका ध्यान करना है शंभुराकाश मध्य। अपना जो देहाकाश है, हृदयाकाश है, उसके बीच में उस कल्याणकारी का ध्यान करना है। किस प्रकार करना है तो कहा ध्रुवम स्तब्ध्वा, स्तब्ध हो करके इंद्रियां मन इत्यादि कोई भी चले नहीं, अब कहते हैं अधिकम क्षणमेकम, चाहे अधिक हो चाहे एक क्षण भी यदि वो पकड़ में आ जाए तो क्रतु शतस्यापि चतुस्सप्तत्यायत् फलं तदवाप्नोति। चौहत्तर प्रकार के भिन्न भिन्न यज्ञ हैं, उन यज्ञों को सौ सौ बार कर ले वे, तब जितना पुण्य होगा उतना पुण्य ये जो आकाश के अंदर शंभू का जो ध्यान स्तब्ध हो करके करना है ये उतना ही पुण्य दे देता है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क ने कहा यज्ञ है, आचार है, दान है, अहिंसा है, अनेक प्रकार के धर्म है, अयंतु परमो धर्मो यद्योगेन आत्मदर्शनम्। चित्त को एकाग्र करके जो अपने परमात्म स्वरूप का दर्शन है वही परम धर्म है। ठीक जिस प्रकार से लोक में सारे काम आप लोग किस लिए करते हैं, इधर वाले बाएं हाथ वाले पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब अगर आपको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया जाए, सारे नोट आपके दस्तखत से ही निकलने लगे, तो फिर नोटों के कमाने की कोई जरूरत रहेगी? ठीक इसी प्रकार से सारे जितने कार्य किए जाते हैं उन सब का एकमात्र उद्देश्य है उस शंभु का दर्शन। अब यदि उसी का दर्शन हो जाता है क्षण भर के लिए भी तो फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता रह जाएगी। इसलिए कहा कृष्णम ओंकार गतिश्च सर्वध्यान योग ज्ञानानां यत्फलम्। ओंकार के इस ज्ञान के द्वारा सारे ध्यानों का, योगों का और ज्ञानों का, ज्ञान की साधनाओं का अंतिम फल क्या है तो वह शंभु। ओंकार के इस रूप को समझ लेने पर वह शंभु नित्य प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैं ओमिति एतद् यस्य बुधैर्नाम गृहीतम्। यद भासेदं भाति समस्तं वियदादि। ओम इति एतत्, ओम यह, एतत् के द्वारा ये बतलाते हैं कि जो ये सुनाई दे रहा है यही, दूर की चीज को तत् कहा जाता है, पास की चीज को एतत् कहा जाता है। तो एतत् अर्थात ओम ये जो उच्चारण किया जा रहा है यही, ऐसा नहीं कि वो कोई और दूसरा ओम हो गया। ये नाम गृहीतम, जैसे ही इस नाम को लेते हो, नाम लेने का मतलब क्या, किसी चीज के अर्थ को जाने बिना उस शब्द के उच्चारण का मतलब नाम लेना नहीं है। एक छोटी लड़की थी, उसके यहां एक महात्मा आया करते थे। छोटी बच्ची थी तो उन्होंने उसको सिखला दिया। कि भाई तुम भगवान का भजन किया करो। उसने कहा कैसे किया करो? छोटी बच्ची थी, उन्होंने कहा गोविंद गोविंद हरे मुरारे, ये तुम स्मरण किया करो, रोज नियम से करना। तो करती रही। अब उसकी शादी हो गई। अब पुराने लोग समझ जाएंगे, नयों को तो मुश्किल पड़ेगी। शादी हो गई तो उसके पति का नाम था गोविंद लाल जी, ससुर का नाम था हरिराम जी, ददिया ससुर का नाम था मुरारी लाल जी। अब न वो गोविंद कह सके, न हरि कह सके, न मुरारी कह सके। उसका बिचारी का जब बंद हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसके बच्चा हो गया। बच्चे का नाम लोगों ने लल्लू रख दिया। अब उसने अपना जप वापस शुरू कर दिया। लल्लू के बाबूजी, दादाजी, परदादाजी, हरिराम जी दादाजी हो गए, मुरारी लाल जी परदादाजी हो गए। थोड़े दिनों के बाद पियर गई, महात्मा जी आए हुए थे। महात्मा जी ने पूछा जब करती है? बोले हाँ महाराज, थोड़े दिन तो छूट गया था। क्यों छूट गया था? उसने कहा जी ये ऐसे ऐसे नाम की गड़बड़ी हो रही थी, अब वो लल्लू पैदा हो गया, अब कोई बात नहीं, अब मेरा जब शुरू हो गया। अब वो नाम तो ले रही थी, पर उसको ये पता नहीं था कि वो नाम लल्लू के बाबूजी का या दादाजी का थोड़ी ले रही थी। नाम लेने का मतलब होता है शब्द के अर्थ को समझ के उच्चारण करना। यदि शब्द के अर्थ को समझे बिना उच्चारण करोगे तो वो नाम लेना नहीं कहा जाता। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं ओमिति एतद् यस्य बुधैर्नाम गृहीतम्। ओम ये जिसका नाम है वो बुध लोग अर्थात समझदार बुद्धिमान लोग विचार करने वाले लोग जब उसका नाम लेते हैं अर्थात ओम के अर्थ को समझ करके नाम लेते हैं। वो अर्थ क्या है तो यस्य भाषा वियदादि सर्वम जिसके प्रकाश से आकाशादि सारा प्रपंच प्रकाशित हो रहा है। वो है तो सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, वो नहीं तो कुछ भी प्रकाशित नहीं हो रहा। दो चीजें होती हैं तभी कोई चीज प्रकाशित होती है। ज्ञात होती है प्रकाशित होती है मन। एक तो वो चीज है ये बात हो, घड़ा है तभी ना घड़े की प्रतीति होगी, घड़े का ज्ञान होगा। घड़ा है ही नहीं तो घड़े का ज्ञान क्या होगा। तो ज्ञान होने के लिए चीज में है पना चाहिए। और ज्ञान होने के लिए मैं चेतन चाहिए। मैं जानने वाला हूं और सामने वाली चीज है तभी ज्ञान होगा ना। मैं नहीं हूं तब भी ज्ञान नहीं होगा। और चीज नहीं है तब भी ज्ञान नहीं होगा। अब यहां पर आचार्य कहते हैं यद भासेदं भाति समस्तं वियदादि, जिसके प्रकाश से आकाश आदि सब प्रकाशित होते हैं। अब जब विचार करते हैं तो वो दो चीजें लगती हैं क्योंकि दो के बिना काम हो नहीं सकता। और यहां कह दिया यद भासेद तो वो एक चीज होनी चाहिए, इसलिए कहा कि वो एक ही है। तम प्रत्यंचम दक्षिण वक्त्रम कलयामी, वो दो चीजें नहीं हैं, वो एक ही चीज मन के अंदर आई हुई प्रत्यगात्मा रूप से प्रत्यंच रूप से प्रतीत हो रही है और वही बाहर में आकाश आदि प्रपंच रूप से प्रतीत हो रही है। लगता है मैं अलग हूं, चीज अलग है। चीज में है पना होना चाहिए, मैं होना चाहिए ज्ञान रूप। परंतु आगे जब विचार करके देखते हैं तो कहा तम प्रत्यंचम दक्षिण वक्त्रम कलयामी, चीज केवल है इतने से भी प्रकाशित नहीं होती। मैं हूं इतने से भी चीज का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है मैं और चीज का है पना जब एक होवे तभी ज्ञान होता है। मोटी भाषा में समझ लो, आंख के सामने घड़ा आएगा तभी दिखेगा ना। मैं हूं इतने मात्र से भी घड़ा नहीं दिखेगा, घड़ा है इतने मात्र से भी नहीं दिखेगा। जब घड़ा और मैं दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं मान लें कि चीजें तो अलग अलग है, इकट्ठी हो जाती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, यस्य ज्ञातस्य स्वपदस्था विधि मुख्या। सचमुच में ये चीजें एक हैं, परंतु इनकी एकता का पता नहीं है, बस पता लगता है। अज्ञान के कारण चीज दो लगती है, ज्ञान होने पर पता चल जाता है एक है।